ओम शांति। हार्टी वेलकम टू उषाबेन, जो बहुत ही व्यस्त हैं, कल ट्रैवलिंग कर रही है और हमारा निमंत्रण स्वीकार करके सुबह हमारे पास पहुंच गई है, तो वार्म वेलकम। कितने लोग हैं जो उषाबेन को नहीं जानते हैं? नहीं, पर्सनली नहीं, टेलीविजन में सुना है, ज्वेल्स में सुना है, ठीक है ना, बाकी नहीं, पर्सनली नहीं मिले, फर्स्ट टाइम। कितने लोग हैं फर्स्ट टाइमर्स? देखो उषाबेन काफी लोग हैं, हाँ, जो आपको नहीं मिले हैं पर पहली बार, ठीक है। ज्वेल्स से तो सब सबको जानते हैं, मुझे नहीं पहचानते हैं, परंतु अभी मुझे पहचान लिया आपने, है ना। अच्छा, उषाबेन 40 साल से ज्ञान में है और उसने ज्ञान लुसाका जाम्बिया में लिया है। एनीबडी फ्रॉम देयर, अफ्रीका, लुसाका जाम्बिया? नो, ओके। तो ज्ञान लुसाका जाम्बिया में लिया और 36 साल से सेवा में समर्पित है। लुसाका छोड़कर फिर वो भारत में आ गए थे और मधुबन में पिछले 25 साल से सेवाएं दे रहे हैं। देश विदेश में उन्होंने बहुत सेवाएं दी है और खास करके SML सेल्फ मैनेजमेंट और लीडरशिप कोर्स सारा उसने डेवलप किया है, उसकी बुक्स भी लिखी हैं और भारत की लगभग सब मेजर बड़ी बड़ी जो कंपनीज आदि हैं तो वहां उसने सबको SML कराया है और अभी भी कराती रहती है। अब भी कहाँ जा रहे हो ना, कल आप
बरेली, यूपी,
यूपी यूपी जा रहे हैं, तो वहाँ सारा माना कि सारा समय बाहर भी होते हैं। गीता रामायण का जो काफी लोगों ने MP3 खरीदा है और सुना भी है एसेंस, तो वो सब उसका डेवलप किया हुआ कोर्सेज हैं और टीवी चैनल में भी आती है, यूट्यूब में भी आती है, और लास्ट मैंने जो सुना था वो महाभारत का आपका थी सुना था, तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को चाहिए तो उसकी MP3 भी मिल सकती है, सुनने जैसी है, क्योंकि काफी ऐसी ज्ञान की बात बहुत स्पष्ट समझ में आती है। तो हम उषाबेन से सुनेंगे, गीत एप्रोप्रिएट था, हाँ, फुल स्टॉप लगाना, तो विघ्न को कैसे तुरंत फुल स्टॉप लगाए, तो उसका ऊपर हमको आज उषाबेन सुनाएंगी। वेलकम।
ओम शांति। बाबा ने हम सबको मुरली के अंदर जो प्रेरणा दी है निर्विघ्न बनने की, और शायद अभी के समय अनुसार यही समय की पुकार है। बाबा जब भी कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे बाबा का गुह्य रहस्य होता है। बाबा कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह देते हैं, क्योंकि भक्ति में भी भगवान को कहा गया है कि वो जानी जाननहार है, सब कुछ जानता है। बाबा कई बार मुरली में हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे मुझे हरेक के दिलों में बैठ के देखने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है कि इसके संकल्प में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी भगवान का ये टाइटल अगर मशहूर है कि जानी जाननहार है, तो क्या जानता है। बाबा समय को बहुत अच्छे से जानता है कि आने वाला समय कौन सा है। दुनिया के अंदर ज्योतिष लोग भी बता देते हैं कि हाँ भाई 2014 का साल कैसे होगा, वो भी जानते हैं, लेकिन वो जो जानते हैं और उससे जो लोगों को बताते हैं, लोगों को डराते हैं। लेकिन भगवान जो जानते हैं तो भगवान डराते नहीं, लेकिन बाबा हमें तैयार करते हैं कि आने वाले समय के लिए जो बातें आने वाली है वो बाबा नहीं सुनाते हैं, नहीं तो डर जाए बच्चे, लेकिन उसके लिए कौन सी तैयारी हमें करनी है, कौन सी स्थिति बनानी है, उसके ऊपर बाबा का विशेष फोकस रहता है कि हम बच्चों को आने वाले समय के लिए अपने आप को निर्विघ्न बनाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जैसे पिछले दो सीजन से बाबा की जो मुरलियां चली और इस सीजन की मुरलियों में भी जब बाबा ने पहली मुरली में भी बताया निर्विघ्न बनना, इस मुरली में भी विशेष उसके ऊपर अंडरलाइन कराया, तो उसमें भी विघ्न को क्रिएट करने वाली चीज कौन सी है, विघ्न कहां से क्रिएट होते हैं। दो तरीके से क्रिएट होते हैं विघ्न, एक है व्यर्थ से, कहीं व्यर्थ बातचीत चल रही हो, व्यर्थ टाइम गंवा रहे हैं, व्यर्थ संकल्प। इसीलिए दुनिया में भी कहा जाता है ऑब्स्टेकल्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड, जो कमजोर मन है वहीं से विघ्न खड़े होते हैं। और मन कमजोर क्यों है, क्योंकि व्यर्थ चला रहा है, उसमें काफी हमारी मानसिक शक्ति ड्रेन हो रही है, इसलिए मन कमजोर हो जाता है। तो जितना ये व्यर्थ को ज्यादा क्रिएट करता है, यही विघ्न को खड़ा करने का या क्रिएट करने का माध्यम बन जाता है। और दूसरा कोई भी विघ्न तब आता है जब हमारी कमजोरी का प्रयोग होता है। हर एक इंसान में विशेषता भी है, हर एक इंसान में कमजोरियां भी है। जब तक हम संपूर्ण बने तब तक कमजोरी थोड़ी बहुत तो रहती ही है, और ये कमजोरी का प्रयोग जहां होता है, मान लो कि जिसके अंदर गुस्सा हो, तो गुस्से का जब भी प्रयोग होता है, गुस्से का जब भी कर्म के अंदर इंटरफेरेंस होता है, हमारे स्वभाव में इंटरफेरेंस होता है, तो उसी से विघ्न खड़ा होता है। जैसे गुस्सा है, कोई लोभवश, ईर्ष्यावश, द्वेषवश, जो कर्म में प्रयोग होने लगा, वो कमजोरी आ गई कर्म में, स्वभाव में, इंटरैक्शन में, तो वहां वो विघ्न को खड़ा करने का एक माध्यम बन जाता है। तो ये दो तरीके से हमारे सामने विघ्न खड़े होते हैं, एक व्यर्थ के प्रयोग से, एक कमजोरियों के प्रयोग से। और उसी के ऊपर बाबा की मुरलियां अटेंशन दिलाने के लिए अंडरलाइन किया जाता है कि जहां व्यर्थ के बजाय समर्थ, मन की आदत है सोचने की, इसलिए सोच तो चलेगा, और सोच तो कोई नहीं बन सकता है, निरसंकल्प स्थिति इस समय में नहीं बन सकती है। जैसे जैसे संपूर्णता की स्टेज के नजदीक जाएंगे तो निरसंकल्प अवस्था हम अपनी बना सकते हैं, लेकिन जब तक हम कर्मयोगी जीवन में हैं, कर्म में है, तो वहां निरसंकल्प नहीं हो सकते, वहां संकल्प तो चलते ही है, लेकिन संकल्पों की जो क्वालिटी है, उन संकल्पों की क्वालिटी में मुझे विशेष अटेंशन देना है। ये बाबा का भाव था कि जितना हमारे संकल्पों को हम क्वालिटी वाला बनाते जाएंगे, कोई ना कोई वैल्यूज को लेकर के क्वालिटी वाला बनाए, या कोई ना कोई ज्ञान के एप्लीकेशन से हम उसको क्वालिटी वाला बनाए। आजकल की दुनिया के अंदर मोबाइल निकले हैं, है ना, बहुत महंगे महंगे मोबाइल आते हैं, और ये महंगे क्यों है, उसमें एप्लीकेशंस ज्यादा होते हैं, और जो लोग एप्लीकेशंस को यूज करना जानते हैं उससे वो फायदा ले सकते हैं, कि एक जगह बैठ करके भी सारी दुनिया से अपने आप को कनेक्टेड भी रख सकते हैं, तो सेवा भी कर सकते हैं, किसी को मुरली भेजी, किसी को पॉइंट्स भेजी, चाहे जिस भी तरह से, है ना। तो जितने एप्लीकेशंस ज्यादा है और उस एप्लीकेशंस को यूज करने का ज्ञान है, नॉलेज है, तो उसका फायदा जीवन में, सेवा में, उन्नति के लिए भी ले सकता है। लेकिन अगर जिनको एप्लीकेशंस यूज करना नहीं आता है और वो महंगा मोबाइल खरीद ले तो क्या होता है? वो तंग होता है, वो टच स्क्रीन वाला होता है, यहां टच हो गया तो भी बंद हो जाता है, तो बात करते करते बंद हो जाता है, तो वो तंग होते रहते हैं, है ना? और तंग होंगे तो क्या कहेंगे, अरे इसे तो वो डब्बा ही हमारा अच्छा था, वो छोटा डब्बा ही हमारा बहुत अच्छा था, कि कम से कम बात तो ढंग से कर सकते थे हम, ये महंगा मोबाइल खरीदा लेकिन ढंग से बात भी नहीं कर सकते, तो तंग होते हैं। आखिर वो किसी न किसी को दे देते हैं कि भाई मुझे आता नहीं है इसके एप्लीकेशन, इसे तो मेरा वही छोटा सा ही अच्छा है डब्बा, जिसमें कम से कम हम ट्रैफिक कंट्रोल भी ढंग से कर सकते हैं अपना, है ना? भावार्थ ही है, ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया, लेकिन ये ज्ञान जो बाबा ने इतना सारा ज्ञान दिया है उसके भी एप्लीकेशंस हैं, और जिनको ये ज्ञान के एप्लीकेशंस यूज करना आ जाए कि भाई ये तीन बिंदी का ज्ञान बाबा ने दिया, उसका एप्लीकेशन कहाँ करना है, कैसे करना है, तो उसका एप्लीकेशन फुल स्टॉप के लिए, कि व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप करना है तो वहां ये तीन बिंदी का ज्ञान बहुत काम करता है। उसमें आत्मा बिंदी का एप्लीकेशन कहाँ लगेगा, परमात्मा बिंदी का एप्लीकेशन कहाँ लगेगा, और ड्रामा बिंदी का एप्लीकेशन कहां लगेगा। जहां मुझे व्यवहार में आना है, यानी देही अभिमानी स्थिति बना करके रहना है, तो वहां आत्मा की बिंदी का एप्लीकेशन बहुत काम करता है। कि जब बाबा कहते हर एक से जब मिलो, तो वहां फुल स्टॉप थोड़ी लगाएंगे, ड्रामा बिंदी थोड़ी लगानी है, है ना? ड्रामा बिंदी लगा देंगे तो आप लोगों के साथ मिल नहीं पाएंगे। लेकिन वहां बाबा ने हमें एप्लीकेशन दिया है कि बच्चे जब भी आप किसी से मिलो, आत्मभाव से मिलो, आत्मा उसकी भ्रुकुटी में देख करके उसके साथ इंटरैक्ट करो, तो उस समय जो आत्मा के सातों गुण जो है, वो सातों गुण प्रवाहित होने लगेंगे आपके इंटरेक्शन में, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये प्रवाहित होने लगेंगे, खुशी, उमंग, उत्साह, ये प्रवाहित होने लगेंगे, तो उससे आपका संबंध सुमधुर हो जाएगा। इसी तरह जहां पर बाबा को याद करना है, बाबा बिंदी लगानी है कि बाबा कोई मानो के कोई आपकी तारीफ कर ले, आपने कोई अच्छा कार्य किया और किसी ने आपकी महिमा किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो उस समय कौन सी बिंदी लगाओ, बाबा बिंदी लगाओ। बाबा हमेशा कहते बाप को ले आओ, जहां बाप आ जाएगा तो वहां पर बात नहीं होगी, लेकिन उस समय ये अगर कह दिया कि बाबा ने विशेषता भरी है बाबा के सेवा के कार्य के लिए, तो बाबा को सामने ले आए तो अपना अभिमान नहीं आएगा, बाबा को ले आए ना, तो जैसे उसी वक्त वो फल को बाबा के आगे समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। जब बाबा को ले आए बीच में, तो कहीं पर भी कोई बात में स्वभाव संस्कारों की टक्कर में नहीं आएंगे, तो वहां पर बाबा बिंदी का एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, तो बाबा की याद और भी मजबूत हो जाएंगी। हर बात में जब बाबा को ले आएंगे कि अरे बाबा कराने वाला है, करण करावनहार वो है, बाबा करा रहा है, तो निमित्त बनने का भाव हमें हर कार्य में आगे से आगे बढ़ाने लगेंगे। इसलिए शिव बाबा बिंदी का एप्लीकेशन कहाँ होना चाहिए और ड्रामा की बिंदी का एप्लीकेशन कहाँ होना चाहिए कि ड्रामा में कोई सीन आए तो वहां पर वो सीन मेरी बुद्धि को प्रभावित न करे। तो कह दो ड्रामा, वाह ड्रामा वाह, है ना? तो वाहरे में कहां बोलना है, वाहरे बाबा कहां बोलना है और वाहरे ड्रामा कहां बोलना है, ये तीनों बिंदी को कहां अप्लाई करना है, ये एप्लीकेशन हमें बहुत जरूर समझना चाहिए। गड़बड़ हो गई हा? तो भी मुश्किल हो जाएगा, है ना? ड्रामा का एप्लीकेशन कहां होगा? अगर किसी की टांग टूट जाए तो वहां हमें ये नहीं कहना है ड्रामा बहुत अच्छा है, क्या होगा? गुस्सा हो जाएगा, सामने वाला व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाएगा, या भाई मेरी टांग टूटी तो इसमें अच्छा क्या हुआ, है ना? तो वहां डिसर्विस हो जाएंगी। लेकिन उस समय उस व्यक्ति की अगर टांग टूटी है तो उसको सहानुभूति की जरूरत, तो वहां देही अभिमानी बन करके उसकी सेवा करें तो वो सेवा उसको टच होंगी, उसकी सर्विस हो जाएगी। वहां ड्रामा बिंदी नहीं लग सकती है। तो हर चीज का एप्लीकेशन कहां लगाना होता है वो बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि वहां अगर गड़बड़ हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बाबा ने जो हम बच्चों को बार बार ये इशारा दिया, बच्चे फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप का मतलब क्या है? कोई बिंदी है तो नहीं जो उठा के लगा दिया, बुद्धि में लग गई, व्यर्थ संकल्प चलना बंद हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फुल स्टॉप लगाने का मतलब क्या है, क्या समझते हैं? दिशा बदलनी होती है, संकल्पों की दिशा को बदलना होता है। कि बाबा ने हमें समर्थ संकल्प इतने दिए हैं तो व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप लगाने का मतलब ये नहीं कि स्टॉप माना कुछ सोचना ही नहीं है, सोच तो चलेगा, लेकिन उस वक्त हम अपने संकल्पों को एक दिशा दे दें। अब अपने आप दिशा अगर नहीं दे सकते हैं तो मुरली बहुत उत्तम साधन है। कि उस समय मुरली पढ़ने बैठो, मुरली का अध्ययन करो, मुरली से पॉइंट्स निकालो, तो बिजी करने की बात है बुद्धि को। जितनी बुद्धि हमारी बिजी होंगी उतना फुल स्टॉप लगाना आसान होगा। तो अपने मन के विचारों को एक दिशा देना बहुत जरूरी है, तभी फुल स्टॉप लगा सकेंगे। दूसरी बात, फुल स्टॉप लगाना माना मैच्योर होना, मैच्योर होना। किस तरह से मैच्योरिटी को हम डेवलप करेंगे, कैसे मैच्योर हो जाएंगे? तो मैच्योर होना मतलब ज्ञान की जितनी धारणा होगी हमारे व्यवहार में, कर्म में, जीवन में, जितनी उसकी धारणा होगी तो ज्ञान की धारणा से व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी बढ़ती है। मैच्योरिटी का आधार है अनुभव, अनुभव को बढ़ाना। कई लोग हमें कहते हैं बहन जी हमें तो कोई अनुभव ही नहीं है। तो अनुभव कैसे मिलेंगे? ज्ञान में आए लेकिन अनुभव नहीं है, तो अनुभवी कैसे बनेंगे? अनुभवी बनने के लिए जितना ज्ञान का प्रयोग है उतना अनुभव है। जैसे मैं उदाहरण बताऊं कि जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है दुनिया के अंदर, साइंस का स्टूडेंट जो होता है मानो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है। अब उस केमिस्ट्री के स्टूडेंट को टीचर ने थियरी में बोर्ड पर बता दिया कि H2O इज इक्वल टू वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर, हाइड्रोजन की दो मात्रा ऑक्सीजन की एक मात्रा इज इक्वल टू वाटर H2O, है ना। ये उसने एक फॉर्मूला बताई। अब वो फॉर्मूला उसको याद कैसे रहेगी, उसके लिए उसके पास प्रैक्टिकल्स कराते हैं। जब वो प्रैक्टिकल्स करते हैं कि H2O तो दो मात्रा हाइड्रोजन की एक मात्रा ऑक्सीजन की, दोनों को मिक्स करके जब उनको दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कराया जाता है, तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया तो वो बच्चों को याद रह जाता है। तो साइंस के स्टूडेंट्स को इसीलिए प्रैक्टिकल्स होते हैं, थियरी प्लस प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल्स जब उनका करते हैं तो उनको याद रखना आसान हो जाता है। इसी तरह बाबा ने हमें इतनी बातें बताई है, सुबह रोज मुरली सुनते हैं हम। ये मुरली सुनना थियरी है, थियरी जरूरी है, क्योंकि थियरी अगर नहीं समझी तो प्रैक्टिकल कभी कर नहीं पाएंगे। तो थियरी हमें रोज सुबह मुरली, इसलिए बाबा कहते मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, ये थियरी है। लेकिन मार्क्स किसमें ज्यादा मिलता है, थियरी में प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल्स में मार्क्स ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए एक घंटा बाबा ने हमें थियरी बता दी, बाकी 23 घंटा जो है हमारा प्रैक्टिकल्स का है। अगर कोई कहे कि मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो प्रैक्टिकल ही नहीं कर रहा है। जो मुरली में सुना उस दिन हमें उस मुरली की बातें जो है, जो श्रीमत है, जो ऐसी बाबा की बात, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है। जब उसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, बिना एक्सपेरिमेंट के एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। जहां एक्सपेरिमेंट है वहां एक्सपीरियंस मिलेगा ही। एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस दोनों का बहुत गहरा संबंध है। एक्सपेरिमेंट है लाइफ में, उसमें भी हर लेवल पर एक्सपेरिमेंट करना है। कहां कहां एक्सपेरिमेंट, मनसा लेवल पर एक्सपेरिमेंट करना है, वाचा लेवल पर तो बहुत चलता है हमारा एक्सपेरिमेंट, लोगों को हम सही समय पर ज्ञान दे सकते हैं, कर्मणा में एक्सपेरिमेंट, फिर संबंधों में एक्सपेरिमेंट, प्रकृति के साथ एक्सपेरिमेंट, अपने संस्कारों पर उसका एक्सपेरिमेंट, कितनी जगह एक्सपेरिमेंट्स करना है, स्वभाव पर उसका एक्सपेरिमेंट, स्वप्न में एक्सपेरिमेंट, ये सारे लेवल्स हैं एक्सपेरिमेंट्स के। तो वही ज्ञान की बातों को जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते जाएंगे तब तक मैच्योरिटी हमारी आएगी नहीं, मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा नहीं, कि अनुभव ही नहीं है। क्योंकि मैच्योरिटी तभी आती है जब व्यक्ति के जीवन में अनुभव मिलता जाता है। इसीलिए दुनिया के अंदर भी जब कोई बच्चे होते हैं, बचपना होता है, गलतियां करते हैं, चंचलता होती है, सब कुछ होता है, तभी बड़े क्या कहते हैं, थोड़ी दुनिया की थपेड़े खाएगा, अनुभवी होगा तो मैच्योरिटी लेवल उसका आ जाएगा। तो मैच्योरिटी कैसे आती है, अब उसने दुनिया में थपेड़े क्यों खाई, दुनिया में थप्पड़े क्यों खाई, क्योंकि उसको ये नॉलेज नहीं था, थियरी में भी नॉलेज नहीं था कि ये चीज का मैं अपने संबंधों में, संस्कारों में, स्वभाव में एप्लीकेशन कैसे करूं, नहीं कर पाया तो थप्पड़ मरी, है ना। थप्पड़ मिलती है और जैसे ही थप्पड़ मिली तो अनुभवी बना, अनुभवी बना तो मैच्योरिटी लेवल उसका आ गया कि दोबारा वो गलती नहीं करेगा। ये भाई पिछली बार का मेरे को अनुभव है कि ये करने से तो मार पड़ेगी, चाहे समय की मार पड़ेगी, परिस्थिति की मार पड़ेगी, कोई समस्या की मार पड़ेगी, इसलिए अनुभवी हो गया तो मैच्योरिटी आ गई। तो मैच्योरिटी इंसान में कब आती है? जब अनुभव करता है। और अनुभव करने के लिए बाबा ने हमें पहले ही कि थप्पड़ खा करके अनुभव करने की जरूरत नहीं है हमें, समय की थप्पड़ खाने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा अगर समय की थप्पड़ खा करके अनुभवी बने तो मार्क समय को मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बाबा ने हमें पहले ही सारे एप्लीकेशंस बता दिए हैं। रोज सुबह एक घंटा मुरली सुनते हैं हम, थियरी में सारा दिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है, प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। और जब अलग अलग लेवल पर उसका एक्सपेरिमेंट करते अनुभवी बनते हैं तो मैच्योरिटी लेवल हमारा अपने आप बढ़ता जाता है। तो आज बाबा को कौन से बच्चे चाहिए? अनुभवी बच्चे चाहिए, मैच्योर बच्चे चाहिए, जिसमें बचपना हो, चंचलता हो, ऐसे बच्चे बाबा को नहीं चाहिए। तो बचपना और चंचलता, कर्मेंद्रिय की चंचलता और स्वभाव के अंदर बचपना, ये बाबा कहते हैं अभी नहीं चाहिए, अभी सब वानप्रस्थी है। बाबा टाइटल दे देता है, वानप्रस्थी माना ही अनुभवी। अब बचपन के दिन तो समाप्त हो गए, अब माना बाबा का कहने का भावार्थ ये है कि आप सब सारे दिन में ज्ञान का इतना प्रयोग करते जाओ हर लेवल पर, जो आपको अनुभवी बनना आसान हो जाए, ताकि समय पर जो परिस्थितियां आएगी, आने वाले समय में जो परिस्थिति आने वाली है, जो समस्याएं आने वाली है, प्रकृति से, लोगों से जो समस्याएं आने वाली है, आप पहले ही अनुभवी और मैच्योर होंगे तो परिस्थिति के पेपर को पास करना आसान हो जाएगा। थप्पड़ नहीं खानी पड़ेगी लेकिन पास करना आसान हो जाएगा, और उस समय खुशी होगी कि हाँ। तो बाबा हम बच्चों को इतना अनुभवी बनाना चाहता है कि बाबा कहे अंतिम समय में कई आत्माएं आपके पास आकर के कहेगी कि भई आप इतने समय से ज्ञान योग कर रहे हैं, थोड़ी अंजलि अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा, जिससे हमारा मन शांत हो जाए। हमारे मन में बहुत विचार चल रहे हैं, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर थॉट्स, तो कुछ आपकी आपके अनुभव से कुछ अंजलि हमें दे दो कि कैसे मैं अपने थॉट्स को शांत कर सकूं। और उस समय आप कहो मुझे तो कोई अनुभव है ही नहीं, तो क्या होगा? वो आत्मा कितनी निराश हो जाएगी जो उम्मीद लेकर के आई लेकिन आपके पास आने पर उसको कुछ मिला ही नहीं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते अब फुल स्टॉप लगाना, मतलब मैच्योर बनना। समय आने पर, परिस्थिति आने पर मैच्योर नहीं बना जाता है, लेकिन पहले से ही अपने आप को तैयार करना है। तो जितना ज्ञान योग के एक्सपेरिमेंट्स हमारे होंगे उतना अनुभवी बनना सहज होगा, मैच्योरिटी लेवल उतना बढ़ता जाएगा। कितनी सुंदर बात बाबा की है, है ना? तो फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जो मैच्योर होंगे। जो मैच्योरिटी नहीं, बचपना है, चंचलता है, वो फुल स्टॉप कभी नहीं लगा सकते। ये अनुभव की अंजलि सामने वाले को चाहिए। तीसरी बात कि फुल स्टॉप लगाना, मतलब कोई परिस्थिति जब आती है और फुल स्टॉप लगाने की बात आती है, मतलब बाबा के प्यार को अनुभव करना। क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार बाबा का कब अनुभव होता है? जब परिस्थिति होती है ना, तब बाबा की याद भी बहुत आती है। नॉर्मल लाइफ में इतनी याद नहीं रहेगी, मिस हो जाएंगी, लेकिन अगर कोई पेपर टेस्ट पेपर आ गया तो बाबा की याद बहुत ज्यादा होगी। कई बार कई लोग कहते बार बार मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, कोई पेपर किसी के लिए बार बार आता है, तो बार बार क्यों आता है? क्योंकि शायद वही मेरी कमजोरी है जिसको अभी तक मैंने पहचाना नहीं है, तो इसीलिए मेरे सामने वो टेस्ट पेपर बार बार आ रहा है ताकि मैं अपनी कमजोरी को पहचान जाऊं। और बाबा ये इशारा देना चाहता है, ड्रामा ये इशारा देना चाहते हैं कि ये परिस्थिति बार बार जो मेरे सामने आ रही है, मतलब मुझे अपने आप को वहां से ठीक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अंतिम समय मेरे सामने वहीं से पेपर आएगा। स्कूल में जब पढ़ते हैं ना, तो फाइनल एग्जाम्स के पहले वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो जरूर आते हैं और उसकी तैयारी टीचर्स कराने लगते हैं, क्योंकि टीचर्स का प्यार होता है स्टूडेंट से कि भाई मेरा स्टूडेंट फेल होना माना मेरी फ्यूचर के लिए, मेरे लिए लोग सोचेंगे कि इसने पढ़ाया ही नहीं ठीक से। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होते हैं उसको पता रहता है, तो उसके हिसाब से वो उस पर अंडरलाइन कराता है। तो बार बार कोई चीज आती है तो इसका मतलब बाबा का प्यार भी हमारे लिए इतना ज्यादा है कि मेरा एक भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए फाइनल एग्जाम में। तो वो बात बार बार, वो पेपर बार बार अगर आ रहा है तो बाबा मुझे कुछ इशारा कर रहा है कि मुझे अपने आप को कहां ठीक करना है, किस सब्जेक्ट में, किस पॉइंट में मेरी वीकनेस है, उसके तरफ मेरा ध्यान खींचवाना चाहते हैं, है ना? इसीलिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा रहे हैं। जैसे स्पोर्ट्स में जब ओलंपिक्स होती है तो जो सारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, मानो रनिंग के लिए होते हैं या जिस भी ओलंपिक्स के गेम्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें जितने भी लोग होते हैं एक ही देश के एक ही स्थान के, उन लोगों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाता है और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराई जाती है। और जब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराते हैं, है ना, तब वो उसमें खरा उतरते हैं और विन कर लेते हैं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ही न करे तो ओलंपिक्स में विन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये परिस्थिति अगर कोई बार बार मेरे सामने आ रही है, माना बाबा मुझे उस विषय में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दे रहे हैं, क्योंकि मैं बाबा का फेवरेट स्टूडेंट हूं। तो बाबा नहीं चाहता है कि ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट फाइनल एग्जाम में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे उसमें फेल हो जाए। भले बाबा के बच्चे तो सभी है, लेकिन इसका मतलब कोई परिस्थिति बार बार मेरे सामने आ रही है तो बाबा मुझे उस परिस्थिति को अलग अलग एंगल से सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दे रहे हैं। जब ये सोचने लगेंगे ना तो व्यर्थ संकल्प चलेगा, व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाएंगे, बाबा के प्यार को महसूस करने लगे कि बाबा का प्यार मुझसे कितना है, है ना? मुझे याद आता है कि जब मैं स्कूल में थी तो हम भी स्टेट लेवल पर खेलने के लिए जाने वाले थे, गर्ल्स की टीम थी, तो वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करानी थी। तो वॉलीबॉल में मैं बहुत वीक थी, मेरे को ये इंडिया के सिस्टम के हिसाब से वॉलीबॉल नहीं आता था और हमारे सर की उम्मीद बहुत थी कि नहीं तुम वॉलीबॉल खेल सकती है, मैं तेरे को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो हर रोज, मना हर वीकेंड पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाते थे और इतनी प्रैक्टिस करवाई कि वॉलीबॉल टीम में हम लोग जीत के आए, है ना। कहने का भाव, दूसरे तो सब परफेक्ट थे लेकिन मेरे प्रति जो उम्मीद थी उनकी कि नहीं तुम्हारे हाइट के हिसाब से भी तुम वॉलीबॉल अच्छा खेल सकती, मैं तुझे प्रैक्टिस करा के तुझे परफेक्ट इन लोगों के लेवल पर ले आऊंगा। इतनी प्रैक्टिस कराई, इतनी प्रैक्टिस कराई कि कभी कभी मेरा ये हाथ सूज जाता था इतना बड़ा, और मेरे को मालिश करनी पड़ती थी अपने आप से, तब जाकर के इतना वो बॉल को ठोकते थे और मारते थे। लेकिन तभी हम पास कर सके ना, अगर वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं होती थी तो शायद मेरे कारण सारी टीम क्या होती थी, फेल हो जाती थी, डाउन हो जाती थी, है ना। तो इसी तरह बाबा भी मुझे कोई बात, अगर मेरे सामने कोई परिस्थिति बार बार आ रही है तो बाबा जानता है कि मेरी कमजोरी कहाँ है। तो वो परिस्थिति मेरे सामने बार बार आएंगी तो उसकी जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मुझे दे रहे हैं, तो यही तो भगवान के प्यार का अनुभव करना है कि बाबा शायद मुझे इतना प्यार करता है कि अंतिम समय बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर्स होंगे मेरे सामने उन सब के बीच में मैं फेल न हो जाऊं, बाबा का नाम नीचे न हो जाए, उसके लिए बाबा मुझे अभी से प्रैक्टिस करा रहा है। तो बाबा का प्यार अगर अनुभव करेंगे तो व्यर्थ संकल्प चलेगा तो? व्यर्थ कब चलता है? पता नहीं, बाबा तो मेरा ध्यान ही नहीं रखता है, मेरे सामने बार बार ये परिस्थिति आ रही है। माना दोनों तरीके से सोच सकते हैं, या तो नेगेटिव सोच सकते, व्यर्थ संकल्प चला सकते कि बाबा का शायद प्यार ही नहीं है मेरे लिए, दूसरों को तो इतनी मदद मिलती है मुझे मदद ही नहीं मिल रही है, तो ये परिस्थिति बार बार मेरे सामने आए, तो आप नेगेटिव भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव सोचा जाए कि बाबा का प्यार इतना है कि बाबा डज नॉट वॉन्ट टू लेट मी डाउन अंतिम परीक्षा में, उसके लिए पहले से ये बार बार प्रैक्टिस करा के मुझे परफेक्ट बना रहे हैं, नहीं तो मैं परफेक्ट, तो ये बाबा का प्यार अगर अनुभव करेंगे तो नेगेटिव संकल्प चलेंगे, व्यर्थ चलेगा, फुल स्टॉप, व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। और खुशी इतनी बढ़ेगी, बाबा का प्यार है मेरे लिए तो खुशी कितनी बढ़ेगी, और ऐसा महसूस होगा कि बाबा मुझे मदद भी दे रहा है, सूक्ष्म में बाबा की मदद तो होती ही है हर परिस्थिति को, और बाबा परफेक्ट भी बना रहा है ना, तो कितनी खुशी होगी। तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे, व्यर्थ चलेगा ही नहीं, तो बस एंगल थोड़ा चेंज कर लेना होता है ना, फुल स्टॉप लगाना मना, अपने सोचने का एंगल थोड़ा चेंज करना होता है बस। जैसे कोई हीरे की खान में जब हीरा ढूंढने के लिए जाता है ना, हीरा कहाँ मिलता है पता? कोयले की खान में मिलता है, हीरा हमेशा कोयले की खान में होता है। लेकिन जो हीरा ढूंढने के लिए जाता है कोयले की खान में, वो अगर कोयला देखेगा तो उदास हो जाएगा, सारा काला ही काला है, काला ही काला है ना, उदास हो जाएगा। लेकिन जो हीरा ढूंढने वाला होता है ना, उसकी नजर वो काले पर नहीं होती है, कहां चमक, कहां से चमक आ रही है उसको वो देखने का प्रयत्न करता है, तो उसको मैक्सिमम हीरा मिलता है। तो इसी तरह बाबा भी हमें क्या कहते हैं, ये परिस्थिति ये कोयले की खान है लेकिन उसमें मुझे हीरा ढूंढना है, माना फुल स्टॉप लगाना, मन अगर दिशा देनी है तो दिशा कैसे देंगे हम, तो हीरा ढूंढना माना मुझे कौन सा वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिल रहा है इसमें से। कमजोरी तो काला है ना सारा, लेकिन हीरा क्या है? हीरा ये है उसमें, कमजोरी तो ढूंढ लिया, हाँ कमजोरी तो ढूंढ लेंगे आप तभी आप उसमें परफेक्शन को प्राप्त कर लेंगे, पहले में हो गया। लेकिन अब हीरा ढूंढना है। अब हीरा ये है कि ये परिस्थिति में बाबा मुझे क्या सिखाना चाहता है, किस बात का अनुभव देना चाहता है। क्योंकि भगवान को जब भी कुछ देना होता है ना, कोई वरदान देना होता है, तो ऐसे तो बैठे बैठे वरदान नहीं दे देंगे बाबा। कोई भी वरदान तभी मिलता है जब वो परिस्थिति आती है, बाबा को याद करते हैं, और याद करके जब आगे बढ़ते हैं और उस परिस्थिति में हिम्मत के साथ, हिम्मत का एक कदम बढ़ाते, तो बाबा का वरदान भी मिलता है, मदद भी मिलती है। तो जब भी भगवान कुछ देना चाहता है तो बिना परिस्थिति को वो दे नहीं सकता है। अब बाबा को हम कहे कि बाबा मुझे सहन शक्ति चाहिए, मेरे में मानो सहन शक्ति की कमजोरी है, सहन नहीं कर सकती हूँ, सहन शक्ति की कमी है। अब योग में हमने बाबा से कहा, बाबा मुझे सहन शक्ति देना। अब ऐसे तो बैठे बैठे दे दिया तो भी पता नहीं चलेगा कि बाबा ने मुझे सहन शक्ति दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन जब मेरे सामने ऐसा कोई परीक्षा आएगी और उसमें मैं सहन कर सकूं, तभी तो मुझे पता चला हाँ बाबा की शक्ति मुझे मिली है। तो वो परिस्थिति जो आएगी, तो वो परिस्थिति में बाबा मुझे कुछ देना चाहता है, सहन शक्ति देना चाहता है, तभी तो शक्ति मिलेगी। और वो सहन शक्ति को मैं जब प्राप्त करूं और उस परिस्थिति को पार करूं, तो मुझे कॉन्फिडेंस, हाँ मेरे में सहन शक्ति है अभी, है ना। सामना कर, कई लोगों में डर बहुत होता है, डर बहुत है, डर के कारण कुछ फेस नहीं कर पाते हैं। बाबा को कहते, बाबा मेरे में इतनी फेस करने की शक्ति आ जाए, कैसी भी परीक्षा है मैं फेस कर सकूं। अब बाबा ने दे दिया, ऐसे तो देगा नहीं ना, योग में तो ऐसे नहीं वरदान आने लगेंगे, नहीं, परिस्थिति आएंगी। और परिस्थिति आएंगी, हम जब उसको फेस करेंगे तो वो डर खत्म हो जाएगा, और बाबा की शक्ति भी अनुभव होगी, और आप उसको पार भी करेंगे और अनुभवी हो जाएंगे, और आपकी कमजोरी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो कमजोरी को समाप्त करना हो और वो शक्ति को अनुभव करना है, यही तो हीरा है जो कोयले की खान में ही मिलेगा, यानी परीक्षाओं के बीच में ही वो मिलेगा। बिना परीक्षा, अगर परीक्षा ही नहीं आए तो मुझे ये हीरा मिलेगा कहां से? बिना कोयले की खान में उतरे हीरा मिलेगा कहां से है? तो इसीलिए बाबा के जो वरदानों के हीरे मुझे प्राप्त करने हैं, बिना परीक्षा आए उसको हीरे को अनुभव, हीरा प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये जब मेंटल स्टेज हमारी बन जाएगी, ये जब मन की सोचने की एक विधि हो जाएगी कि ये परीक्षा है, तो व्यर्थ चलाने के बजाय कि क्यों मेरे सामने बाबा भी बार बार परीक्षा लाता रहता है, मेरी सहन शक्ति खत्म हो रही है, अभी मेरे सामने फिर ये परीक्षा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये परीक्षा ही आती रहती है, अब ये सोचेंगे तो व्यर्थ चलेगा। लेकिन अगर ये सोचो कि ये परिस्थिति आई, माना बाबा मुझे कुछ देना चाहता है, कोई वरदान देना चाहता है, तो खुशी होंगी, व्यर्थ चलेगा। तो खुशी खुशी से जब उसको पार करने के लिए हिम्मत के साथ कदम आगे बढ़ाएंगे तो व्यर्थ संकल्प चलेगा नहीं चलेगा, और निर्विघ्न भी हो जाएंगे, पार भी कर लेंगे, वरदान भी मिल जाएगा, हीरा भी मिल जाएगा, और खुशी भी बढ़ेगी। तो हर परिस्थिति को देखने का नजरिया, दृष्टिकोण, जो हमारा परसेप्शन है वो कौन सा है, उससे हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं या तो व्यर्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है, व्यर्थ क्रिएट करना है या फुल स्टॉप लगाना है। तो फुल स्टॉप लगाने के ये तरीके हैं, डायरेक्शन चेंज करो, नेगेटिव के बदले पॉजिटिव सोचो, और पॉजिटिव सोचने के लिए सबसे पहले मैच्योर बनना जरूरी है, अनुभवी बनना जरूरी है, प्रयोग करना जरूरी है, एप्लीकेशंस को यूज करना आना चाहिए, है ना। बाबा ने तो सारे एप्लीकेशंस दे दिया है, लेकिन जो बच्चों को ये एप्लीकेशंस यूज करना नहीं आता है वो तंग होते हैं, क्या कहते हैं, इससे तो 100 बात की एक बात आत्म समझ के बाबा को याद करो, बस वो डब्बा ही ठीक है, आत्म समझ कर बाबा को याद करो बस, और झंझट में जाना नहीं है। झंझट लगती है उसको, ज्ञान की भी झंझट, मेरे को एप्लीकेशन ही नहीं आते, आत्मा समझो और बाबा को याद करो बस। लेकिन उसमें हम अनुभवी नहीं बनते है ना, उसमें प्रगति नहीं होती है, आगे बढ़ने का नहीं होता है, और खुशी तभी होती है जब आगे बढ़ता है व्यक्ति, पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ता है ना, तभी वो खुशी मिलेगी, नहीं तो खुशी कहां से मिलेगी। तो इसीलिए चॉइस अपने ऊपर है कि मुझे कौन सा एंगल अपनाना है। ये सोचो बाबा का प्यार मिल रहा है, ये सोचो बाबा का वरदान का हीरा मिल रहा है इसमें, ये माना सोचने का तरीका है खाली, उसी से आप व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा ने इतने सारे सोचने के तरीके हमें दिए हैं, अब किस समय कौन सा एप्लीकेशन चलाना है ये आपके ऊपर है कि क्या सोचेंगे आप। इसमें से लेसन सीखना है, वरदान अनुभव करना है, अनुभवी बनना है, या कोई कमी कमजोरी को समाप्त करने के लिए ये चीज आई है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिल रही है, कितने ऑप्शंस है आपके पास, कितने ऑप्शंस है। उसके बाद भी अगर हमारे में व्यर्थ चले और हम खुद के लिए विघ्न खड़ा करें तो क्या कहेंगे बाबा, भाई इतने ऑप्शंस दिए तुमको, कोई एक तो ले लेता था, कोई एक तो यूज कर लेता था पास करने के लिए, कितने ऑप्शंस दिए सोचो। उसके बाद भी अगर हम फेल हो गए तो दुनिया भी क्या कहेगी, ये भगवान के बच्चे जिनको इतने ऑप्शंस मिले थे फिर भी वो पास नहीं हो सके तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हा? तो अभी हमें क्या करना है, एप्लीकेशन हाँ, इसीलिए कभी भी कोई विघ्न आए तो बाबा हमेशा यही कहते, विघ्न को विघ्न रूप में नहीं देखो। तो इसीलिए हम ब्राह्मणों के लिए कितने टेस्ट पेपर होते हैं पता है आपको, कितने टेस्ट पेपर होते हैं, लेकिन वो टेस्ट पेपर को आप किस रूप में देखो ये आपके ऊपर है, लेकिन टेस्ट पेपर्स कितने आएंगे। अगर मुझे सर्व गुण संपन्न बनना है, माना मुझे सतयुग के आदि में आना है, तो सतयुग के आदि की क्वालिफिकेशन क्या होती है, सर्व गुण संपन्न, तो हर गुण का एक टेस्ट पेपर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, भाई तभी तो सर्व गुण संपन्न बनेंगे ना। अगर मुझे त्रेता युग से आना है तब तो ठीक है, त्रेता युग के अंत से आना है, लेकिन अगर लक्ष्मी नारायण के साथ में आना है, लक्ष्य तो हम सबका क्या है, पहले जन्म से आना है, लक्ष्मी नारायण के साथ आना है, तो वहां तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से सर्व गुण संपन्न, तो हर गुण का एक टेस्ट पेपर होगा, और जितनी बार फेल हुए उसमें उतनी बार फिर से देना पड़ेगा जब तक पास ना हो। तो वो आपके ऊपर है कि कितनी बार फेल होना है, उतनी बार बढ़ेगा टेस्ट पेपर, तभी तो सर्व गुण, तभी पता चलेगा ना मेरे में सर्व गुण आए कि नहीं, मधुरता, नम्रता, उदारता, ये सारे गुण आए कि नहीं आए, वो कैसे पता चलेगा बिना टेस्ट पेपर दिए। सर्व गुण संपन्न खाली बैठे बैठे थोड़ी बन जाना है, कि बैठे रहे हम बाबा की याद में कुछ करे ही नहीं, तो बैठे बैठे कोई सर्वगुण संपन्न बनेगा क्या? तो इंटरैक्शन में ही मधुरता कितनी है, नम्रता कितनी है, ये सारे वैल्यूज मेरे हैं। हर वैल्यू का एक टेस्ट पेपर होगा। या तो आप पहले से उसमें इतने एक्सपर्ट हो जाओ और उसी के आधार से आप देना शुरू करो, तो बिना वो भी टेस्ट पेपर फाइनल एग्जाम जो होती है उसमें क्वेश्चंस तो आएंगे ना, उतने क्वेश्चन पेपर तो होगा कि नहीं होगा? वैल्यूज का क्वेश्चन पेपर पूरा होगा जो मुझे सर्व गुण संपन्न बनना है, तो हर वैल्यू का एक टेस्ट पेपर होगा कि नहीं? तभी तो भक्ति वाले जो होते हैं ना, वो जब ज्ञान मार्ग में आते हैं तो क्या कहते हैं, इसे तो भक्ति में कभी हमने टेस्ट पेपर नहीं दिए, यहाँ तो हर रोज एक नया टेस्ट पेपर है भाई। तो सर्वगुण संपन्न वहां तो खाली पूजा करनी है, अगर पूज्य बनना है तो टेस्ट पेपर नहीं देनी पड़ेगी। तो सर्वगुण संपन्न सोले कला संपूर्ण, तो सोले कला की टेस्ट पेपर आएंगे कि नहीं? संपूर्ण निर्विकारी, तो वो प्यूरिटी हर लेवल की, उसके टेस्ट पेपर्स आएंगे कि नहीं आएंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम, तो हर मर्यादा की टेस्ट पेपर होगी कि नहीं होगी? हाँ भाई, सतयुग के आदि में आना, कोई बैठे बैठे आ जाएंगे क्या? भगवान को इतना कच्चा सौदागर है क्या? हाँ, कि भाई आ गए, बस बाबा को याद करो और आप पहुंच जाएंगे नंबर वन में बिना टेस्ट पेपर दिए। इसीलिए साकार में बाबा क्या कहता था दादी असुरा ने, कि भाई इतना मिर्ची खाएंगे, शेर आएगा तो डरेंगे तो नहीं? तो पहले से बाबा मेंटली तैयार करते थे, और ये दादियों ने हर प्रकार के टेस्ट पेपर पास किए, देखे हैं हमने। वो लोग संगठन में रहते थे, यहाँ 350 रहते थे ना यज्ञ के अंदर, तो स्वभाव संस्कार हर रीति का टेस्ट पेपर पास किया कि नहीं किया? जो नहीं कर सके चले गए, जो नहीं कर सकते हैं आज भी, कितने लोग ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं, हिम्मत टूट गई उनकी। क्यों क्यों टूट गई? उनको नंबर वन में आना ही नहीं है। बाबा इसीलिए कहते हैं यह सारी राजधानी स्थापन हुआ, दास दासी के भी दास दासी यहीं से बनने हैं। जो नहीं कर सके वो त्रेता के अंत तक 33 करोड़ में जिसको आना है, वो कम टेस्ट पेपर होते हैं भाई। जो नंबर वन में आने वाले हैं और वो सोचे कि मेरे सामने कोई टेस्ट पेपर ही नहीं आए, मैं नंबर वन में चली जाऊं, तो होगा क्या ऐसे? तो सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, है ना, ये सारे टेस्ट पेपर, तभी तो ये टाइटल मिलेंगे। हाँ, ये टाइटल मिल गया अभी, सर्व गुण संपन्न हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। तो एक एक मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन की, एक एक मर्यादा के भी टेस्ट पेपर होगी। बिना टेस्ट पेपर के नंबर वन कैसे जाएंगे बताओ, है ना? और उसमें अगर व्यर्थ चलाने लग गए तो फेल ही हो जाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं ऑप्शंस आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, किस तरह से उसको पास करना है। हर मुरली में किसी न किसी विधि से, युक्ति से बाबा ने ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब तो हिम्मत से कदम बढ़ाते जाओ, हिम्मत रखते हुए बाबा की मदद का अनुभव करते हुए कदम बढ़ाते जाओ, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो बाबा कोई भी बच्चे को फाइनल एग्जाम में फेल होना देखना नहीं चाहते, इसलिए बाबा कहते हैं अंतिम समय पेपर सब तरफ से आएंगे। जो फाइनल एक एक क्वेश्चन सब तरफ से बचा हुआ जो होगा ना, वो सब तरफ से आने वाला है। अब अपने आप को देख लो, कितने दिए हैं, कितने बाकी है, ट्यूशन के लिए। हाँ, बाबा तो इस तभी तो कहा ना, हम टीचर्स तो फिर भी डरा सकते हैं, लेकिन बाबा तो डराएगा नहीं, इसलिए बाबा डराता नहीं। बाबा तो युक्त युक्त, हाँ बच्चे बाप को याद करो, याद करते हुए पार करना है बस। बाबा ने इतना सिंपल बता दिया, बाबा थोड़ी घर आएगा। हाँ, वो तो अंत में तो बनना ही है, इसीलिए बाबा कहते हैं तब तक कई टीचर्स को रखा है धर्मराज के रूप में, है ना, कि भाई ये आपको ठीक करते जाएंगे, टाइम टाइम से देते जाएंगे एक्स्ट्रा ट्यूशन भी और ये करते हुए भी, लेकिन डरना नहीं है, ये सारे ऑप्शंस को लेकर के पास हो जाना है। हाँ नहीं, थैंक यू। आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हाँ? बाबा के कई ज्ञान की पॉइंट से बस खेलना चालू करो, इतना अच्छा लगेगा। ये विचार सागर मंथन क्या होता है, ज्ञान के पॉइंट से खेलना होता है, तो उसमें बुद्धि खुलती भी जाएंगी, अंदर गहराई में जाते जाएंगे, मोती रतन मिलते जाएंगे, व्यर्थ चलने की मार्जिन नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि को बिजी रखो, है ना। कई बार हम देखते हैं, कई भाई बहने आते हैं हमारे पास भी, ये प्रॉब्लम आ गया है, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम आ गया, ये प्रॉब्लम। अरे बाबा ने सब कुछ दिया हुआ है, ये ऑप्शन नहीं, आपको जो ऑप्शन सूट करे, ये ऑप्शन सूट नहीं करता ये करो, ये नहीं करता ये करो, ये नहीं तो ये करो, जो भी सूट करता है आपको उस चीज को अपना लो, और अपनाते हुए बस एक मास्टर की आप अपने आप पर देख लो कि मेरी नेचर के हिसाब से कौन सी मास्टर की मुझे काम आएगी, है ना। बाकी हम लोग जैसे बताएंगे हम अपने अनुभव से बताएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो चीज आपको सूट नहीं करती भी हो, तो हर एक को अपनी मास्टर की खुद डेवलप करनी। आपके स्वभाव संस्कार सब देखते हुए हम एक जनरल बता देंगे कि भाई हाँ ऐसे करो, ये प्रयोग करके देखो, ये प्रयोग करके देखो, ये प्रयोग करके देखो, ऐसे बताएंगे अपने हिसाब से, है ना। लेकिन कई बार जब हम बताते हैं, जैसे कई लोग को कहते भी हैं, मधुबन वालों के पास में आते हैं जाते हैं, पूछते हैं हम लोग क्या करें, ये परिस्थिति में क्या करें। अब उन्होंने जो बताया आप योग का प्रयोग, लेकिन वो व्यक्ति की समझो नाइट ड्यूटी होती, वो सुबह अमृत वेला उठ ही नहीं पाता है, 12 बजे के बाद ही उसकी नाइट शिफ्ट पूरी होती, उसके बाद सोना होता है, तो वो प्रयोग कैसे करेगा वो। लेकिन वो उस व्यक्ति को पता नहीं कि उसके सामने क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, इसीलिए आपको अपनी मास्टर की खुद ढूंढनी होगी, आपके पास ही है, लेकिन उसको ढूंढना है बस, और बाबा को याद करते जाएंगे तो ढूंढने में सहज हो जाएगा, है ना। तो यहां वहां पूछने की भी जरूरत नहीं रहती है, लेकिन हम अपने आप से उसको ढूंढना चालू करेंगे तो व्यर्थ भी समाप्त हो जाएगा, है ना। अब तक बहुत स्पून फीडिंग हमने ले लिया, अब स्पून फीडिंग नहीं, अब खुद खाने का भी सीखना चाहिए, बनाना भी सीखना चाहिए, लेकिन जिसको बनाना ही नहीं आता है तो क्या करेगा, तो तंग होता है, वो तंग होता है। लेकिन ज्ञान का भोजन तो हरेक को बनाने के लिए बाबा ने सिखा दिया है, तो बनाओ, और जितना टेस्टी उसको बनाएंगे उसको खाने में भी आसान हो जाएगा और एंजॉय भी करेंगे, है ना। ब्राह्मण जीवन का रियल एंजॉय कर सकेंगे आप, टेस्ट पेपर से डरना नहीं है, लेकिन ये उसको चैलेंज या एक स्टेपिंग स्टोन समझ लेंगे कि हर चैलेंज जो आती है, हर टेस्ट पेपर जाता है, मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, मुझे आगे बढ़ाते ही जाएंगे, तो आप कभी उदास नहीं होंगे, दिल शिकस्त नहीं होंगे, हारने की वृत्ति अंदर में नहीं आएंगी व्यर्थ चला करके, लेकिन हर समय ऐसा लगेगा एक नया एक्सपेरिमेंट करते हुए नया एक्सपीरियंस मिलने का समय आ गया है। हर रोज एक नया एक्सपीरियंस का दिन होगा, हर रोज एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, तो ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए उमंग उत्साह बना रहेगा, कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा कि उमंग उत्साह का कम हो जाए। मोनोटोनस लाइफ हमें तभी महसूस होती है जब हम प्रयोग नहीं करते हैं, हर एक चैलेंज को एक स्टेपिंग स्टोन नहीं समझते हैं, तब महसूस होता है कि अरे मोनोटोनस हो गया है, परिस्थितियों से लड़ते 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 थक गए, थकावट महसूस होने लगी, इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन थकावट वाला नहीं है लेकिन उड़ने वाला है। लेबर नहीं करो आप, बाबा क्या कहते हैं, मेहनत वाले योगी नहीं बनो, मोहब्बत वाले, है ना। बाबा के प्यार को हर परिस्थिति में भी बाबा के प्यार को अनुभव करने का प्रयास करो कि इसमें कितना बाबा मुझे प्यार दे रहा है, और पास होऊंगा तो और ज्यादा। जैसे बच्चा पास होके आता है तो माँ बाप का डबल प्यार का अधिकारी बन जाता है, तो यही अगर सोचेंगे आप तो बाबा के प्यार को भी महसूस करेंगे, मोहब्बत वाले योगी बन करके उड़ने का अनुभव करेंगे, नहीं तो मेहनत करते 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 थक गए, और थक गए तो ब्राह्मण जीवन जैसे बोरियत जीवन महसूस होने लगेगा, है ना। तो बोरिंग वाला जीवन नहीं हमारा, हर रोज एक नया एक्सपीरियंस है, हर रोज एक नई उमंग उत्साह की बात, एक नया हीरा प्राप्त होने का समय आ गया है अभी, ठीक है ना। फुल स्टॉप लगाना आसान है या व्यर्थ संकल्प चलाना आसान है? फुल स्टॉप लगाने का आसान है, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, पूछो पूछो, किसको पूछना है? प्रसन्न चित हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्रश्न ही नहीं रहा तो ना? चलो बाबा को याद करेंगे। थैंक यू बाबा, आप लोग ने एक चांस दिया। अच्छा है, अच्छा है ना, हाँ अच्छा लगता है ना। बाबा का धन्यवाद, कराने वाला बाबा है। हाँ 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 ठीक है। अभी एक नई किताब और लिख रहे हैं, फिर वो भी आपको मिल जाएंगी, एंशियंट विजडम फॉर मॉडर्न टाइम्स। मैं अभी मेरा बाहर जाने का बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए वो लास्ट चैप्टर बाकी रह गया है बस, नहीं सेकंड होगा, पहला सेल्फ मैनेजमेंट वाला है, सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप। हाँ वहाँ यहाँ अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। अभी ये किताब पहली निकालेंगी मैं, पहला वर्जन हिंदी निकलेगा, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। ये बड़ी होंगी, लगभग 300 पेज की हो जाएगी, लेकिन अच्छी है, उसमें आपको और मजा आएगा पढ़ने में, बहुत अच्छी बना रही है। अब एक चैप्टर, लास्ट चैप्टर रह गया है बस, बाकी फिनिश हो जाएंगे वो अभी, मना एक महीना अगर मुझे फुल मिल जाए तो कंप्लीट हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली मई जून तक कंप्लीट हो जाएगी। हाँ मिल जाएगा।
बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से, जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया। कृपा से।